This is VOA News. I'm Jim Bertel. Police fired tear gas and protesters broke windows at a shopping mall Sunday in anti-government demonstrations across Hong Kong. Hong Kong is in the sixth month of protests that began in June over a proposed extradition law and have expanded to include demands for greater democracy and other grievances. Democrats and Republicans are already fighting over witnesses for the public impeachment hearings later this week. AP's Ben Thomas reports.
GOP members of the committees conducting the hearings have released a list of at least eight people they want to hear from, among them former Vice President Joe Biden's son Hunter and the anonymous whistleblower. But Republicans need the committee's approval to summon their witnesses, and Democrats are in the majority. Chairman Adam Schiff offered a quick response, saying he won't let the hearings serve as the vehicle to conduct sham investigations into the Bidens or the 2016 election. Nor will he let the hearings aid what he calls Trump's effort to threaten, intimidate, and retaliate against the whistleblower. Ben Thomas, Washington.
Iran began pouring concrete for a second nuclear reactor at its Bashir power plant Sunday. The plant is fueled by uranium produced in Russia, not Iran, and is monitored by the United Nations International Atomic Energy Agency. Tehran has said its nuclear activity is for peaceful purposes, namely providing energy to the country. Iran's leader says a massive new oil field has been uncovered in the southwestern region of the country. President Hassan Rouhani says the field has 53 billion barrels of crude oil and could boost the country's oil reserves by a third. Bolivian President Evo Morales called for new elections today following nationwide protests over a disputed vote that he claimed he had won. Morales made the announcement after a preliminary report by the Organization of American States found irregularities in the October 20th presidential election. This is VOA News. Spaniards went to the polls on Sunday in an election aimed at bringing longed-for stability. Reuters' David Doyle has more.
A bitterly divided Spain returned to the voting booths for the fourth time in as many years on Sunday. The country has been struggling to form a stable government since 2015, when new parties emerged from the ashes of the financial crisis following decades in which power oscillated between the country's two main parties. But Sunday's election looks unlikely to achieve the longed-for stability. Instead, polls point to an even more fractured parliament with no clear winner. Acting Prime Minister Pedro Sanchez called this election after his socialist party won a ballot in April, but failed to form a government.
That is Reuters' David Doyle reporting. Voters are also going to the polls in Romania for the country's presidential election. Analysts say incumbent Klaus Iohannis will likely be returned to office in a runoff vote. If no one receives 50% of Sunday's ballots, there will be a second round of voting November 24th. At least three people have died in bushfires in Australia, and another 30 people have been injured. From Sydney, Phil Mercer reports.
The bushfire crisis spans two states in eastern Australia. Monstrous walls of flame have terrorised towns and villages. Many fires in northern New South Wales and parts of Queensland continue to burn out of control, despite a military-style firefighting effort. Waterbombing aircraft have doused them from above, while hundreds of firefighters, many of them volunteers, have gone into battle on the ground. The full impact on life and property could take days to emerge. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
The World Food Programme warns Haiti is approaching famine-like conditions, with more than one in three people in need of urgent assistance. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
A food assessment in October finds 1 million of the nearly 3.7 million people suffering food shortages in Haiti are facing an emergency and are on the brink of famine. The World Food Programme reports food insecurity in Haiti's rural areas has increased by 15% since the last analysis in December. For the first time, the assessment shows 850,000 people in the capital, Port-au-Prince, are suffering severe hunger, with many not sure when they will eat again. To compound this dramatic situation, WFP spokesman Hervé Frérousseau says humanitarian agencies' efforts to reach people in need have been hampered by security problems during the past 7 weeks. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
For more on any of today's top stories, please visit us at voanews.com. In Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ ان دنوں ایک ویڈیو گردش میں ہے جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان، جو ماضی کے بہت مشہور اپوزیشن لیڈر تھے، وہ ایک مشاعرے میں اپنی غزل سنا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی نظم نہیں بلکہ گاڑی شاعری۔ انہیں کے دور میں حبیب جالب سیاسی جلسوں میں تقریریں کرتے تھے، اپنی سیاسی نظمیں سناتے تھے، اور ماشاء اللہ دور میں وہ گرفتار بھی ہوتے تھے۔ انہی کے دور میں اجمل خٹک ممتاز شاعر تھے اور وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ اٹل بہاری واجپئی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور پیچھے چلے جائیں تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، بے شمار نام ہیں جو جانے مانے سیاست دان بھی تھے اور سکہ بند شاعر ادیب بھی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا سیاستدان کسی قسم کا ادب تخلیق کر رہے ہیں، اور کیا ادیب آج کل سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، کچھ دلچسپی لے رہے ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں انہیں سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ جناب عطاء الحق قاسمی ممتاز کالم نگار ہیں، مزا نگار ہیں، شاعر بھی ہیں، سفارت کی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے ہیں۔ مہتاب اکبر راشدی آرٹسٹ اور ٹی وی اینکر رہ چکی ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، سندھ اسمبلی کی رکن رہی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود فکشن رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے ہیں، بہت سے صحافیوں کے استاد ہیں۔ اور ظفر اللہ خان سیاسی مبصر ہیں، کالم نگار ہیں، وی لاگر ہیں، ید بیضا کے دلچسپ نام سے لکھتے ہیں۔ تو ان مہمانوں سے ہم آج اس دلچسپ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قاسمی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ قاسمی صاحب، ایوب خان کے ماشاء اللہ میں حبیب جالب سامنے آئے، جو بھٹو اور ضیاءالحق کے دور میں بھی باغیانہ نظمیں کہتے رہے، تو ان کے بعد کوئی نیا حبیب جالب کیوں نہیں آیا؟ کیا جبر کا دور ختم ہو گیا ہے، یا کسی شاعر میں ویسی قدرت کلام نہیں، یا ویسی جرأت نہیں، یا شاعروں ادیبوں کو اب سیاست میں دلچسپی نہیں رہی؟
حبیب جالب جو تھے وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ نیشنل عوامی پارٹی کے ایک عہدیدار بھی تھے۔
جی،
یعنی سیاست بھی کرتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک نام اس دور میں شاید آپ نے، سردار عبدالرب نشتر،
جی
یہ گورنر تھے یا وزیر تھے، لیکن لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ شاعر بھی تھے۔
جی،
اور ان کا ایک شعر بڑا ہی خوبصورت ان کا، کہ چمن میں گریائے شبنم غلط صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ غنچوں کو کیوں ہنسی آئی۔
جی،
یہ ان کا، سردار عبدالرب نشتر کا شعر ہے۔
جی،
تو اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کے جو سیاستدان ہیں، ان میں سے بیشتر سے، یعنی شاعری کی ہم توقع کیا کریں، ان سے تو پہلی توقع یہ ہے کہ یہ سیاست تو کریں۔ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سیاست کو، وہ اس طرح کی سیاست سمجھ بیٹھے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ دفتر میں لوگ سیاست کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سیاست ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اب بھی باذوق قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے درمیان اب بھی موجود ہیں۔
جی،
مثلا مشاہد اللہ خان ہے۔
جی جی،
وہ شعر و شاعری سے ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے۔
بالکل
اسی طرح اپنا شہباز شریف اپنے جلسوں میں عموماً میری ہی غزل پڑھا کرتے تھے کہ ظلم بچے جن رہا ہے اونچا ہو بازار میں،
جی
عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے اور بھی وہ اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں فیض احمد فیض، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، اور بھی کچھ نام آپ کو اس طرح کے نظر آئیں گے کہ جو لاؤڈ تو نہیں ہے لیکن ان کے ہاں ایک
فکر ہے،
پولیٹیکل جو عنصر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا شعرا کے ہاں۔ لیکن جو ہمارے شعرا کی اکثریت ہے، ان کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آئی ہوتی ہے۔ لپسٹک ہے، خوبصورت پلکیں بنائی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر وہ دمخم نہیں ہے جو ایک شاعر کے اندر ہونا چاہیے. اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے ایک تماشا ہوتے دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کچھ بیزار سے بھی ہو گئے ہیں, کچھ بے حوصلہ بھی ہو گئے ہیں, ڈیمورلائز ہو گئے ہیں, اور وہ اس طرف آتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود گھبراتے ہیں بلکہ وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی غزل میں انہیں کوئی سیاسی شعر نظر آ جائے یا اشارہ نظر آ جائے اور فیس بک پر ہو تو اس پر کمنٹ بھی نہیں کرتے وہ. یہ صورتحال ہے. تو لہذا میرے خیال میں اب اس پر کیا کیا جائے. لیکن ایک بات میں زیادی بھائی ضرور کہوں گا میں,
جی سر,
کہ میں کبھی بھی سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے کے حق میں نہیں رہا, نہ ہی میں ان کو صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. اگر ان میں کوئی بزدلی ہے یا اگر وہ موقع پرست ہے یا جو کچھ بھی خرابی آپ ان میں گنوا لیں, سوال یہ ہے کہ وہ آئی کہاں سے ہے. وہ آئی اس طرح ہے کہ 53 میں ایوب خان نے ایک یعنی منتخب حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی اور 58 میں وہ برسر اقتدار آ گیا تھا. حالانکہ یہ وہ سیاستدان تھے جن پر لاکھوں جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے ان کا یعنی بوجھ تھا, بحالیات کا, اس کے علاوہ بیسوں اور مسائل تھے لیکن انہوں نے طے کیے. انہی سیاستدانوں نے گوادر جو ہے فیروز خان نون جیسا وزیر اعظم اس کے دور میں یہ گوادر جو ہے یہ خریدا گیا. اسی کے دور میں انہی کے ادوار میں اور بے شمار کام ہوئے. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا سیاستدانوں نے کہ آپ کو آپ تبھی معتبر ٹھہرتے ہیں, تبھی آپ کو حکومت ہاتھ میں آتی ہے اگر آپ بڑوں سے بنا کر رکھیں گے,
جی,
پھر یہ اپرچونسٹ ہوتے چلے گئے.
جی.
لیکن اس کے باوجود ہم اس اصول کو ہر ایک پر لاگو نہیں کر سکتے.
جی.
بھٹو نے قدم جمائے, اس نے دکھایا, اور آج کل نواز شریف جو ہے وہ جی.
اچھا سر, اصل میں چونکہ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب کی بھی ہم بات کریں گے کہ جنہیں بھی ان لوگوں کو ادب سے دلچسپی ہے یا نہیں, یا ادیبوں کو سیاست سے ہے یا نہیں. ظاہر ہے پھر ہم گاڑی سیاست پہ نہیں جانا چاہتے. میں ذرا پروفیسر صاحب سے ذرا بات کروں. جی جی, میں پروفیسر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب سے. سر, آپ خود بھی ادیب ہیں لیکن آپ نے ایک بہت ضخیم کتاب یہ بتانے کو لکھی ہے کہ ادب کی موت واقع ہو چکی ہے. ادب کی موت واقع ہو چکی ہے لیکن ادیب زندہ ہے, تو پھر وہ سیاست میں دلچسپی اب کیوں نہیں دیتا؟
اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک انحطاط اور زوال سے دوچار ہے. اور جب انحطاط اور زوال کی کیفیت ہوتی ہے تو صرف ایک شعبے میں نہیں ہوتی, عمومی طور پر پورے معاشرے کے تمام شعبہ زندگی جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سیاست پہ جو زوال ہے وہ تعلیم پہ بھی ہے, وہ تصنیف و تالیف پہ بھی ہے, اور زندگی کے ہر شعبے سے ہے متعلق. تو جب تک کہ ہم اس حالت زوال سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ صورتحال یوں ہی رہے گی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر شعبے میں ایک جمود کی کیفیت نظر آتی ہے. تخلیقی حرارت جو قوم میں ہونی چاہیے, شاعر و ادیبوں میں ہونی چاہیے, جو یہاں تک کہ سیاستدانوں میں ہونی چاہیے کہ نئے راستے تلاش کریں, مسائل کو حل کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارا وہ مکھی پہ مکھی مارنے والا عمل ہے جو پورے معاشرے میں چلا آ رہا ہے. تو اس لیے شکایت کس سے کی جائے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مبدأ فیض نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے, ورنہ یہی معاشرہ تھا, یہی ملک تھا 50 اور اوائل 60 کی دہائی میں. اردو کے سارے بڑے ناول اسی درسے میں لکھے گئے, یعنی علی پور کا علی ہو, آگ کا دریا ہو, خدا کی بستی ہو, خون جگر ہونے تک ہو, تلاش بہارا ہو, یہ سارے ناول 50 کی دہائی میں یا 60 کے اوائل میں جو ہے یہ سارے کے سارے لکھے گئے. شاعری بھی انہی اوقات میں زیادہ اچھی ہوتی رہی. تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ مبدأ فیض نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے, और इसलिए बंद कर लिया है कि जवाल और इन्हितात का ये जो सर्किल है ये जब मुकम्मल हो जाए तो फिर इसी इन्हितात और इसी जवाल से एक कौम बदली हुई हालत में तुलू हो और फिर शायद कोई शायरी का कोई अदब का जवाब नजर आए। फिलहाल तो मैं ये समझता हूँ कि माशरे को अदब की जरूरत ही नहीं रही और माशरा जो है वो अदब से अदब की तरफ इल्तिफात ही नहीं करता। इसलिए मैंने ये किताब मुरत्तब की कि उर्दू अदब की मौत, और ये किताब जो है उसमें उन तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदीबों की तहरीरें शामिल हैं कि जिन्होंने उर्दू अदब की मौत की आवाज बुलंद की या उसके जमूत की तरफ इशारा किया।
अच्छा सर, ये तो बड़ी मायूस कुन बातें हैं। हम चाहते हैं कि जरा उम्मीद दिलाई जाए। जरा मेहताब अकबर राय जी साहब,
अगर अगर आप मुझे सर, एक जुमला कहने की इजाजत दे दें, ये इन्हेताद की जो बात है ये पूरी दुनिया में इन्हेताद आपको नजर आएगा। अब मुझे बताए सार्थर कहाँ है, बर्नर्ड शॉ कहाँ है, और रशियन जो बड़े बड़े लिखने वाले राइटर जिनके पढ़ते हैं ये कहाँ गया ये सारा?
तो 50 साल बाद पता चलेगा कि आज के दौर में कौन कौन सार्थर था और कौन रसल था।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गार्सिया गैब्रियल मार्केज अभी उसका इंतकाल हुआ, ठीक है ना, और उसने कितने अच्छे नॉवेल लिखे, कितनी अच्छी कहानियां लिखी,
लेकिन
बहुत से नाम लिए जा सकते हैं।
लेकिन नो वन वेट्स टू कर्नल बेहतरीन उसका नॉवेल था, वो मैंने पढ़ा हुआ है वो।
जी जी
जी जी जी।
अच्छा, अब मैं मेहताब साहिब से
तर्जुमा भी छापा था।
जी जी, मेहताब साहिब से बात करते हैं। मेहताब अकबर राजदी साहिब ने ज्वाइन किया है। मेहताब साहिब, सिंध असेंबली और आर्ट्स काउंसिल आसपास वाकई हैं, आपको हमने इधर भी देखा है उधर भी, आप बताएं कि क्या हमारे आज के सियासतदानों को अदब से कोई दिलचस्पी है और क्या अदीबों को सियासत से कुछ रगबत है या खत्म हो गई?
बहुत दिलचस्प सवाल है जी। मेरे ख्याल में जो हमारे सियासतदान हैं उनको खुद से ही फुर्सत नहीं है तो वो आर्ट्स काउंसिल में कहाँ झांकेंगे भाई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैं बहुत अच्छी बातें सुन रही थी हमारी जो दो मौजूद हजरात बोल रहे थे, लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि हर दौर का अपना एक तकाजा होता है और हर दौर में मतलब ये कि तख्लीक कभी रुकती नहीं है। लिखने वाले लिखते रहते हैं, तख्लीक करने वाले करते रहते हैं, तख्लीक के मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स आ जाते हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी ये गुफ्तगू सुनते हुए कि जब शेक्सपियर लिख रहे थे तो उस वक्त शेक्सपियर को कौन पहचान रहा था, सार्थर लिख रहे थे तो उस वक्त कितने लोग उनकी सारी थियरीज को मान रहे थे, या इसी तरह से वॉनगा का जो जो शुरू हुआ और खत्म हुआ सिलसिला वो भी हमने देखा कि किन हालात में इन्होंने अपनी तख्लीकात हाथ मतलब ये सब कुछ करते रहे और कैसे हो गया। यही चीज हम अपने माशरे में जब देखते हैं कि एक ऐसा दौर आता है जब एक कहकशा होती है हर तरफ, अदीबों की, शायरों की, आर्टिस्टों की, एक हर तरफ चमकते सितारे, और एकदम से फिर हम ये देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं और नहीं नजर आते। इन्हितात आ जाता है हर माशरे में, एक इन्हितात आ जाता है
जी।
ये हमने उर्दू अदब में भी देखा है, आर्टिस्टों में भी देखा है, फनकारों में भी देखा है, कहाँ सादकैन होते थे, कहाँ जमील नक्श होते थे, कहाँ मेहदी होते थे, इकबाल मेहदी और बशीर साहब होते थे, मतलब एक वक्त में ये तमाम आर्टिस्ट आपके सामने हैं और फिर एक वक्त आया कि वो सब चले गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तख्लीकें रुक जाती हैं, रुक जाती नहीं है। होता क्या, अब इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो दो तीन है पाकिस्तान की जब मैं बात कर रही हूँ। एक तो तालीम का खाना खराब है, ये यानी अजीब चीज ये है कि जब कम पढ़े लिखे लोग थे तो इतना खूबसूरत अदब तख्लीक हो रहा था और जहाँ लोगों को मौका मिलता था वो पढ़ते थे और फुटपाथ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कैफे में जाके पढ़ रहे हैं, आना लाइब्रेरी में किताबें लेके पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जो हमें पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए, हम वो पैसे लेके और किताबें खरीद करते थे। माहौल ऐसा था, घर का माहौल ऐसा था, आसपास का माहौल ऐसा था। और इस वक्त क्या है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है तख्लीक हो रहा है लेकिन मयार जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने लोगों को पढ़ने लिखने से इस तरह से यानी पढ़ने से मना नहीं किया है, लेकिन एक किताब का जो लम्स है, जो हुस्न है, जो अखबार को उठा के पढ़ने का जो मजा है, किताब को हाथ में लेके पढ़ने का और सफ़े पलटने का जो मजा है, यानी उसको समझना तो दूर की बात है, पहले तो आप उससे ना वाकिफ हो गए हैं। सब लोग जो है हाथ में ये छोटे छोटे टेलीफोन लेके, सेल फोन लेके, और उसी में सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। आपके आईपैड में सब चीजें आ गई हैं, आपके लैपटॉप में सारी चीजें आ गई हैं, जिनको पढ़ना हो वहीं से पढ़ ले। तो एक ये तमाम का तमाम कल्चर से रुखसत हो गया
जी।
और बच्चे जो हैं वो किसी सूरत किताब की तरफ रागिब नहीं हो रहे हैं। स्कूलों में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है असातिज़ा को कि वो लाइब्रेरी का पीरियड रखें, वो बच्चों के हाथ में दो तीन किताबें जरूरी लाजमी करार दे दें, ये घर लेकर जाओ, ये पढ़ के आओ, फिर हमें सुनाओ। अब ये उनके लिए बहुत जरूरी हो गई है ये चीज उन बड़े स्कूलों में तो हो रही है, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहां हमारी पूरी हमारी नस्ल जो है, और एक आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा इन स्कूलों में जा रहा है, वो बेचारे हर चीज से महरूम है। उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा जो हैं वो खुद कॉपी करके वहाँ पास होके वहाँ आते हैं, उनको अदब से कोई शगफ नहीं है।
ये तो सियासतदानों का ही काम है कि वो इस चीज को मुमकिन बनाए,
वो राजीब नहीं करते।
हमारे चौथे जो जी फरमाए
और उसके अलावा जब वो खुद ही उससे वाकिफ नहीं है कि इस वक्त क्या तख्लीक हो रहा है, तो वो क्या बच्चों को क्या बताएं? लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, तस्वुर नहीं है सरकारी स्कूलों में, वो बच्चे उसे बेबहरा हैं। और इसलिए वो जो एक शौक जौक और ये चीजें होती थी, यानी सो कॉल्ड कहने को, तो बहुत एक बड़ी तादाद जो है शायद अब पढ़ी लिखी कहलाती है, लेकिन उनका कोई वास्ता नहीं है। अब आप जो दो चीजें पूछ रहे हैं कि क्या सियासतदान जो है उनको भी कोई शगफ है पढ़ाई लिखाई से और आर्ट काउंसिल की तरफ देखने से, तो वो अगर कहीं चीफ गेस्ट बन के उनको बुलाया जाए तो वो लिखी लिखाई तकरीर तो पढ़ लेंगे, लेकिन उनका दिल और जहन उस तरफ नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ रागिब हैं और शायद कोई तबसरा और तजिया सही मानों में कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो अदीब हैं, और आपने नाम जिनके लिए हबीब जालिब ने क्या कुछ नहीं किया कहा उन हालात में जिसमें कोई बोलने वाला नहीं होता था, उन्होंने, फैज साहब ने, अहमद अदीम कासमी ने, और अमजद इस्लाम अमजद ने, सब सारे लोगों ने जो शायरी की, वो अपने हुस्नो बयान के साथ साथ वो सियासी पहलू भी लिए हुए थी, जो कि अपनी बात लफ्जों में, खुले लफ्जों में भी कह जाते थे, ढके छुपे लफ्जों में भी कह जाते थे, लेकिन आज शायद वो शायरी भी नहीं हो रही है। और हमें ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा शायर जो एकदम से आपके जहन को भी सोचे और उसको जाके छू जाए, और वो सियासत पर भी नजर रखे और लोगों को अपनी शायरी से आगे की तरफ देखने पर मजबूर करे
जी।
और इस तरह से कि लोग उसको बैठ के सुने कि ये क्या कह रहा है। रईस अमरोही जैसे कते कौन लिखेगा
जी।
जॉन एलिया जैसा नज्म नसर शायरी कौन लिखेगा? मतलब कहने का ये है कि वो एक जो कहकशां एक दौर में थी
वो सब रुखसत
हुई। ये उर्दू अदब में भी हुई, सिंधी अदब में भी आप देख लीजिए, शालती भिटाई तोमर है, शेख अयाज चले गए, तनवीर अब्बासी चले गए, अपना सिंध के चीदा चीदा शोरा जो है वो सब चले गए। गाने वालों में आप देखिए अल्लाह जिंदगी दे आपदा को, आपदा परवीन को, लेकिन एक से एक हमारा सिली मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल फकीर, अब्दुल गफूर, खादिम हुसैन, मतलब हुसैन बख्श खादिम, ये ऐसे माई भागी, जरीना बलोच, जेबुन्निसा, ये सब गाने वाले एक वक्त में जो सितारे चमक रहे थे सब चले गए।
हो सकता है कि तो जैसे मैंने पहले कहा कि शायद 50 साल बाद हम लोग कहें कि इस दौर में ऐसा होता
है
जी। हम जफरुल्लाह खान साहब से बात करते हैं।
मैं एक चीज कहूंगी माफ कीजिएगा कि आप ये देखिए कि खत्म कुछ नहीं होता, तगैयुर जो है उसी को सबात है,
बिल्कुल
वो तब्दीली आती है, बुरी होती है, अच्छी होती है, लेकिन तख्लीक रुकती नहीं है, अपने वक्त के साथ होती रहती है, उसके फॉर्म्स, उसकी शक्लें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत बड़ा एक इंकलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, जिससे दो नस्लें निमट रही हैं, मेरी नस्ल और एक जो इस वक्त नस्ल चल रही है, मेरे बच्चे, वो हमसे अलग हैं, वो उनके उनका सोच और वो सब अलग है और हम अलग हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारा दौर खत्म हो गया, क्योंकि हम जिंदा हैं तो हमारा दौर भी जिंदा है, लेकिन जो नई नस्ल आ गई है उनका दौर भी है, उनका वक्त भी है, तो इन दोनों को एक साथ चलना है। अब देखिए कहाँ जाके बात पहुंचती है।
जफरुल्लाह खान साहब से बात करते हैं। जफर साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं?
जी।
अच्छा, ये गुज़िश्ते दिनों फेयर हॉल कराची में एक आर्ट की नुमाइश हुई थी, वहाँ एक बड़ा तनाज़ा हुआ, ज़ाहिर है आपके इल्म में होगा, एक किलिंग फील्ड्स ऑफ कराची के नाम से ये नुमाइश थी, जिसमें एक पुलिस अफसर के हाथों मावराए अदालत मुबैना तौर पर कत्ल 444 अफराद के कतबे रखे गए और लोग वहाँ पे पहुँचे और फिर उसको ख़त्म करवाया गया, तो काफ़ी तनाज़ा हुआ। तो उसकी जो आर्टिस्ट हैं अदीला सुलेमान, उन्होंने कहा कि आर्ट गैर सियासी नहीं होता, गैर सियासी सिर्फ डेकोरेशन पीस होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका इस बारे में क्या तबसरा है, ज़रा वो खबर भी आपकी नज़र में होगी, क्या वाकई आर्ट को गैर सियासी होना चाहिए?
मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, आपने एलएलबी के बीच बिठा दिया है, तो मेरी राय तो तालिब इल्माना है कि हमारे बुजुर्ग हैं, वहीं से सीखते हैं। गुजारिश ये है कि अगर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मुझे दुख है तो एक मजमूई पैराए में मैं एक बात कर रहा हूँ कि शायद हम मजमूई तौर पर एक तहजीबी अफलास का शिकार हो चुके हैं। हमारे समाज में अब इल्म की वो कदर नहीं रही जो होनी चाहिए थी। हम किताब से दूर हो चुके हैं, हम इल्म से दूर हो चुके हैं। हमारे पास बयान करने को, अभी आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, यानी हमारे पास बयान करने को देखिए क्या है। हम बयान करते हैं कि जॉन ने कितना अच्छा शेर लिखा, या फैज ने कितना अच्छा शेर लिखा, या गालिब, या मिसाल के तौर पर हबीब जालिब ने कितना अच्छा शेर लिखा। उसके अलावा हमारे पास गिनती के चंद नॉवल्स हैं। बदकिस्मती ये है कि शुरू से ही लेके आज तक आप देख लें, हम जो तीसरी दुनिया का समाज है, उनका जो अदीब है वो सियासत में इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सका जितना वेस्ट का अदीब कर चुका था या अभी भी कर रहा है। मतलब आप, मैं एक तकाबुल के तौर पे कह रहा हूँ कि क्या हमने मशरिक में कोई ऐसा अदीब पैदा किया है जिसने पूरे समाजी मंजरनामे को थोड़ी बहुत बदलने की कोशिश की हो, या जिस पे असरअंदाज हुआ। अब इस फहरिस्त में आप उधर देखें तो आपके पास रूसो है, मार्क्स है, मिल्स है, मतलब एक तवील फहरिस्त है। और दूसरी बात यह है कि हमारा अदीब भी शायद उस पैमाने का अदब तख्लीक नहीं कर सका जो करना चाहिए था। अब आप देख ले, हमारे पास लैटिन अमेरिका से बोर्खेस पहुंच जाता है, गैब्रियल गार्सिया मार्केस पहुंच जाता है, इटली से अम्बर्टो इको पहुंच जाता है, जापान से ओराकामी पहुंच जाता है, काफ्का पहुंच जाता है, यानी आपकी लाइब्रेरी तक भी पहुंचता है, वाशिंगटन में और इस्लामाबाद और लाहौर में भी पहुंचता है। लेकिन क्या हमारा अदीब फ्रांस पहुंचा है?
ये तो हमारा कसूर है ना कि हमारा अदीब नहीं पहुंच पा रहा, हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर रहे, हम अपनी किताबें वहां तक नहीं पहुंचा रहे।
मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या इसके साथ ये सवाल जोड़ना नहीं चाहिए कि क्या हमने अब तक कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की है जो समाज के पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को थोड़ा बहुत बदल सके? मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिक्स में देख लें, हमारे यहाँ कितने लोगों ने किताबें लिखी हैं, अयूब खान ने लिखी, मुशर्रफ ने लिखी, अल्ताफ हुसैन ने लिखी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिखी, इमरान खान ने लिखी, एतज़ाज़ अहसन ने लिखी, बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी, एक तवील फहरिस्त है। क्या आप किसी को भी मतलब रूसों के बराबर करार दे सकते हैं?
नहीं, जाहिर ये तो यादाश्तें थी इनकी, इसे तो वैसे हम उन्हें मुफक्किर नहीं इस तरह करार दे सकते कि वो कोई नई सियासी थ्योरी पेश करें। ये मुल्क के हालात पे भी मुनासिर होता है और इनकलाब से भी, जाहिर कुछ मेरे ख्याल मुश्किल।
मैं उससे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आपने इकबाल अहमद भी तो दुनिया को दिया है। अब इकबाल अहमद के अलावा आपने क्या दिया जो पोलिटिकल डिस्कोर्स में उस तरह हिस्सा डाल सके? लेकिन सार्थ को आप देख लें, उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक हिस्सा रहा है। कामू को आप देख लें, उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बहुत पॉजिटिव हिस्सा रहा है। हमारा अदीब शायद सियासत पे उतना लिख नहीं सका, यानी समाज को उतना रिलेट शायद नहीं कर सका। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि सियासत और अदब का बहुत गहरा ताल्लुक है, वो इसलिए कि
दोनों का आवाम से ताल्लुक,
समाजी अमल और समाजी इल्म के इस तालमेल का नाम है।
जी।
तो अगर अदीब समाज के साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाता तो मुझे तो समझ आता है कि वो अदब कहाँ जाएगा फिर।
ठीक है, हम कासमी साहब से बात करते हैं। कासमी साहब, क्या ये हो सकता है कि सियासतदानों को लिखने पढ़ने का मौका पहले मिल जाता हो लेकिन अब सियासत फुल टाइम जॉब हो गई है और उन्हें वक्त नहीं मिलता हो? आप तो मतलब आपने कुछ सियासतदानों को, कुछ ना सहाफी हैं और कॉलम लिखते हैं, कुछ लोगों को तो करीब से देखा होगा, तो क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये इन्हें वक्त नहीं होता उनके पास इसके लिए?
जनाब मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है
जी।
मेरे नजदीक सियासतदान का शायर होना जरूरी नहीं
जी।
उसका पोएटिक विजन होना चाहिए उसके पास। अगर उसके पास पोएटिक विजन है तो वो बेहतर है उससे कि वो शायरी करता करे
जी।
दूसरे, यहाँ मैं अभी तक जितनी गुफ्तगू सुनी है मैंने, बहुत ज्यादा कुछ मायूसी सी नजर आई है
जी, जी, जी,
या एक खास एंगल के हवाले से बात की जा रही है,
उम्मीद दिलाई
है। उस तरह शायरी नहीं की गई
जी।
अच्छा, बात यह है कि टी एस एलियट ने कहा था कि जब कोई लेजेंड पैदा होता है तो अपने से 100 साल पहले का और 100 साल बाद का खा जाता है। तो आप ये देख लें, यानी हमारे यहाँ भी ऐसे ही है और इस बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायरी कर रहे हैं और उनके यहाँ शेरों में समाज की बात भी आती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शायरी पॉपुलर ही हुई होती है चाहे किसी के एक शेर की हो। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सेन से रस्ते बना लिए। लेकिन शायरी भी वही पॉपुलर, वरना मैंने जैसे कहा था कि ब्यूटी पार्लर से होके जो शायरी आती है वो अवाम में अपनी जगह नहीं बना रही। लेकिन दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि लोग जो है वो किताबें पढ़नी छोड़ दी है या लाइब्रेरियों का नहीं है सिलसिला। ये अभी जो नेशनल बुक काउंसिल ने जो मेला किया था वहाँ 3 दिनों में 6 करोड़ रुपए की किताबें जो है वो बिकी थी।
किताब बिक रही है, पढ़ नहीं रहे लोग।
नहीं, मेरे ख्याल में जो खरीदता है ना वो नहीं पढ़ता, जिसको मुफ्त मिलती है वो नहीं पढ़ता।
अच्छा,
जिसको जिसने पैसे खर्च किए होते हैं उसको तो पढ़नी पड़ती है। हाँ जी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ है ना, इतनी मायूसी वाली बात नहीं, कतन अदब लिखा जा रहा है। मगर हम एकदम कैसे फर्ज कर ले कि हमारे दरमियान फैज पैदा हो जाए
जी।
फैज भी तो कितने अरसे के बाद पैदा हुआ था ना, नदीम भी बहुत अरसे के बाद पैदा हुआ था
जी।
अब इन मेकिंग हैं लोग, इन मेकिंग लोग हैं, इन्हीं में से कुछ लोग निकलेंगे जो आगे चलकर। और फिर एक और बात लाइब्रेरी की बात मैं बताऊं आपको, मैं पंजाब की, मुझे पंजाब का इलम है क्योंकि पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन का मैं चेयरमैन रहा हूँ। कस्बों में लाइब्रेरियां मौजूद हैं और उनको ग्रांट दी जाती है किताबों के लिए और बकायदा हिसाब रखा जाता है कि कितने लोग पढ़ने के लिए आए थे किताब। तो इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये आप जफर साहब जो फरमा रहे थे ना
जी,
वो एक खास एंगल से बात कर रहे थे कि उन्होंने हवाले भी एक दो दिए इकबाल साहब का, बिल्कुल ठीक उन्होंने हवाला दिया, लेकिन गालिब भी तो अपने अंदाज में ये बातें करता है, इकबाल भी ये बातें करता है, मीर तकी मीर भी ये बातें करता है, फैज ने भी ये बातें की, नदीम ने भी ये बातें की और भी बहुत सारे शुरा ने ये बातें की हैं। लेकिन देखे ना, ये तो बड़ी पुरानी बहस है, अदब राय अदब या अदब राय जिंदगी, तो इसका तो अभी तक फैसला नहीं हुआ।
फैसला
अब इंतजार हुसैन जो है, अब इंतजार हुसैन को आप गैर सियासी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, हर दिन गैर सियासी नहीं है वो। उसके आप नावल पढ़ लें इंतजार हुसैन के, उसके
गाने
पढ़ लें, वो सारे के सारे पॉलिटिकल है जितने भी है।
सही। एक बात में जरा मौजूद से को थोड़ा जरा इसमें दिलचस्पी पैदा करते हैं सबके लिए। कासिम साहब, माजी में फौज में फैज अहमद फैज, जमीर जाफरी और सदीक सालिक जो थे हिस्सा रहे हैं, तो अब क्या फौजियों की दिलचस्पी भी कम हुई है सियासतदानों की तरह अदब में?
बात यह है कि सदीक सालिक जो था वो अदीब पहले था, फौज में बाद में आया था। जनरल मोहम्मद खान और जमीर जाफरी भी जो है ये भी पहले राइटर थे, फौज में बाद में आए। और मेरे ख्याल में हमारे फौजियों ने जो शायरी की है, काश उन्होंने वो शायरी ना की होती।
अच्छा, तो अब लेकिन अब जो लौट आई हुई है अब जो जिन्हें कहना चाहिए फौजी अफसर हैं जो हमारे सामने हैं जो गुफ्तगू करते हैं तो वो तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी अदब पढ़ा है या उन्हें कोई दिलचस्पी है वो सिर्फ प्रोफेशनल फौजी हैं
तो मैं फिर बाद में दोहराऊंगा अपनी
जी
कि जिस तरह मैंने सियासतदानों के लिए कहा है ना कि उनका शायर होना जरूरी नहीं है पॉलिटिक विजन होना चाहिए
जी।
इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि हमारा फौजी जो है वो शायरी भी करे उस्ताने भी लिखे और दूसरे भी करे लेकिन जो एक शेर या अदब जो तकाजा करता है जिस चीज का वो अगर उनके अंदर मौजूद है तो लेकिन वो मौजूद अब होना बड़ा मुश्किल हो गया है जो मुश्किल हो गया है ये यानी 58 से लेकर आज तक
जबर का माहौल है कुछ इस वजह से
जबर का माहौल है और 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 फवाइद और तरह के हैं और मकासिद और तरह के होकर रह गए
ठीक अच्छा हम अभी प्रोफेसर साहब से मुझे एक बहुत अहम सवाल करना है लेकिन जरा मेहताब साहब से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें एक नुक्ता मैंने यहाँ नोट किया था वो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ इधर अमेरिका में होता है जब कोई सदर रिटायर होता है अपने उधर सुबकदोश होता है या और भी बड़ी शख्सियात तो वो उनके नाम की एक लाइब्रेरी बनाई जाती है और उसमें हज़ारों लाखों किताबें आती हैं और लोग वो लाइब्रेरियाँ भरी हुई भी होती हैं लोग आ भी रहे होते हैं इस्तेफादे के लिए हमारे सियासतदानों को साबिक सदूर को वज़ीरे आज़म को इसका ख्याल क्यों नहीं आता कि वो अपनी एक यादगार छोड़ जाएं एक लाइब्रेरी बनाएं और लोगों को ये मौका फराहम करें मेहताब साहिबा से सवाल कीजिए जी मेहताब साहिबा से सवाल
जी
जी जी आपसे
मुझसे सवाल कर रहे हैं
जी हाँ
बहुत अच्छा सवाल है वो देखिए ये बात होती है बहुत जिंदा मार्शल मुझसे पहले एक साहब जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि तराजम नहीं होते या हमारा अदब शायद उस लेवल का मयार का नहीं है जो कि बाकी दुनिया के सामने पहुंचे लातिनी अरब जो अदब जो है उसके तराजम होते हैं गार्शिया मार्केस की किताबें जो हैं वो नोबेल नाम ले जाती हैं लेकिन हमारे अदीब मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगी क्योंकि हमारी जो तख्लीकात हैं वो भी अगर दुनिया तक पहुंचे और आपने जो इस बीच में सवाल ये किया था कि हम लोग तराजम भी नहीं करते
जी, जी, खुद नहीं करते
तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां ये तर्जमे होते हों यानी हमें आप बाहर की तो बात छोड़ दीजिए हमारे अपने मुल्क में उर्दू का सिंधी में तर्जुमा नहीं होता सिंधी का बलोची में नहीं होता दूसरे जो हमारी बाकी जबानें हैं जिनको ये इलाकाई कहते हैं और मैं उसको कौमी कहती हूँ कि हम एक दूसरे का अदब नहीं पढ़ रहे हैं जब हम एक दूसरे का अदब नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नोबेल इनाम देने के लिए कहाँ से तराजम करेंगे अपनी मैं आपको बात बताती हूँ कि हमने सिंध असेंबली से मैंने एक करारदाद पास करवाई के बाबा एक कोई मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब के नाम से एक दारुल तर्जुमा कोई खोल दें उस शख्स का बड़ा काम है उसने उर्दू में लिखा अंग्रेजी में लिखा सिंधी में लिखा और हम इस यहाँ से उर्दू अदब का सिंधी में तर्जुमा करें सिंधी का हम उर्दू में करें दूसरी जबानों में करें ताकि हम एक दूसरे को उसके बाद फिर उसको बाहर भेजें अंग्रेजी में करो भेजो उसको कहीं लेकिन वो करारदाद ही रही किसी की दिलचस्पी नहीं है आपने जो बात की है कि वहाँ जो भी प्रेसिडेंट चला जाता है उसके नाम से हेलो उसके नाम से कोई ना कोई एक लाइब्रेरी बन जाती है लेकिन लाइब्रेरी उनकी तरजीहात में है हम मायूसी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहते लेकिन क्या हमारे पास भी ये हमारी तरजीहात में है कि हम ये लाइब्रेरियां बनाएं आप गिन के देख लीजिए लाहौर में कितनी होंगी कराची में कितनी है ये जब अमेरिकन लाइब्रेरी होती थी अमेरिकन सेंटर भरा हुआ मिलता था आज भी आप लियाकत लाइब्रेरी में जाएं आपको भरा हुआ मिलेगा
लेकिन ये सवाल तो देखिए आप भी शिकवाई कर रही हैं मैं तो ये सवाल चूंकि आपका सियासत से ताल्लुक अब रिसेंटली भी रहा है अभी भी है तो मैं इसलिए करूँ कि क्यों सियासतदानों को इस बात का ख्याल नहीं आता मैं तो ये चाहता था कि आप जवाब
उनके मैं बता रही हूँ आपको इनको उनकी प्रायोरिटी पे ये बिल्कुल नहीं है उनकी प्रायोरिटी पे ये है कि कोई सड़क उनके नाम से बन जाए उनकी प्रायोरिटी पे रेल चला दो ये फलां चीज चला दो लाइब्रेरी कॉलेज स्कूल सरकार इस इन चीजों में वो लोग बिल्कुल ही मैं माफी चाहती हूँ किसी को शायद हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैंने उनकी तरजीहात में ये चीजें बिल्कुल नहीं देखी हैं बात कहने को कह देंगे तकरीरों में कर देंगे लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये चीज होते हुए नहीं देखी है
ठीक
तो इसलिए ये चीज कह देना कि
ठीक है प्रोफेसर साहब से बात करते हैं।
ये चीज कह देना ये इनके तरजीहात में क्यों नहीं है, ये तो वो जहन वाली बात है, सोच वाली बात है, उनकी तरजीहात में और दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये वाली चीजें पढ़ने लिखने वाली लाइब्रेरी रिसर्च और इस तरह की जो होने चाहिए तहकीकाती इदारे, लोगों के बैठने की जगह, वो हमारे पास अभी भी कहीं भी किसी भी सूबे में मुझे होती हुई और देखती दिखाई नहीं देती है।
ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था कि हमारा अदीब और अफसाना निगार, जैसे हम कह रहे हैं कि सियासत से कुछ ला ताल्लुक है, तो क्या हालात हाजरा को या ये सियासी पस मंजर में कोई अफसाने या नॉवेल में अगर उसे दिखाएं तो क्या नॉवेल की और अफसाने की वक़्त कम हो जाती है, यानी उसे हालात हाजरा से जुड़ा हुआ अगर ना हो तो फिर उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ये एक अदीब के हैसियत से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।
नहीं, अदब अदब का गहरा ताल्लुक सियासत से भी होता है, माशरत से भी होता है, हालात के हाजरा से भी होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई बड़ा सानिहा जो पेश आता है तो उसे लाशऊर में जाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जब वो लाशऊर में जाकर के एक एक्सपीरियंस एक तजर्बा बनता है तो उस तजर्बे का इजहार अदब की सूरत में होता है। यही फर्क है सहाफत और अदब में, क्योंकि सहाफत जो है वो वाकई के दबाव के तहत लिखी जाती है, जबकि अदब जो है वो किसी वाकई के दबाव के तहत फौरी तौर पर नहीं लिखा जाता है, उसको एक तजर्बा बनने में कुछ वक्त लगता है, उसके बाद ही वो चीज सामने आती है। हमारे मुल्क के साथ सबसे बड़ा सहना जो है वो सहना मशरकी पाकिस्तान है कि हमारा मुल्क टूट गया, लेकिन आप देखें कि फौरी तौर पर सहना मशरकी पाकिस्तान पर कोई नॉवेल नहीं लिखा गया। फैज साहब ने बहुत बाद में एक गजल लिखी जो बहुत ही मशहूर भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर हमारे इंतजार साहब का नॉवेल आया, दूसरी मौजू पे था, मुसनफर तारण साहब ने लिखा। तो मतलब यह है कि हालात हाजरा पर लिखना जो है वो कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन अमलन लिखा अगर जाएगा तो वो बहुत सतही होगा, फौरी तौर पर जो लिखा जाएगा वो सतही अदब होगा। मैं एक बात और वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से और शायद मेहताब अकबर राजवी साहब की गुफ्तगू से भी ये तासुर फैला कि हम कुछ मायूस हैं। मायूसी की बात नहीं है, अपने जवाल का शऊर होना चाहिए। अगर जवाल का शऊर नहीं होगा और हम सिर्फ खुशगुमानियों में और खुशफहमियों में रहेंगे और माशरे की जो अबतर हालत है उस पर हम सच्चाई के साथ नजर नहीं डालेंगे तो हम गोया अपने आप को धोखा देंगे। असल बात जो है वो ये है कि 70 साल के अरसे में हमने जो कल्चर परवान चढ़ाया है उस कल्चर में अदब और आर्ट की गुंजाइश नहीं रखी गई है। ये कल्चर बुनियादी तौर पर एक जर परस्ती का और मादा परस्ती का कल्चर है, और जर अंदोजी में और मादा परस्ती में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि अब जिंदगी की आसाइशें और जिंदगी का आराम और सहूलतें वो भी होनी चाहिए, लेकिन हमने उन्हीं को वाहिद मतबे नजर बना लिया है, जिसकी वजह से अब आप ये देखिए कि कोई अदब अच्छा लिखा भी जाता है तो कोई उसका चर्चा नहीं होता, कोई उसका तस्करा नहीं होता। पहले कोई अच्छी अदब की किताब आती थी तो एक टेबल सामने आता था, लोग गुफ्तगू करते थे, उस पर बातें करते थे, आग का दरिया लिखा गया तो एक शोर और हंगामा बर्पा हो गया। खुदा की बस्ती जब शौकत सिद्दीकी ने लिखा तो उस पर एक गुफ्तगू का एक सिलसिला लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया, यानी एक नोटिस लिया जाता था। अब सूरत हाल ये है कि कोई अच्छी गजल कहे, कोई अच्छा नॉवेल लिखे, कोई अच्छा नॉवलेट लिखे, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए कि लोग किताबें खरीद तो ले जाते हैं, इससे कोई शुभ नहीं है। कराची में भी यहाँ जो आलमी कुतुब मेला होता है तो हजारों लोग जो है किताबें खरीद ले आते हैं, लेकिन फिर वो किताबें उनको होता क्या है, क्या
झलकते नहीं है,
सजा दी जाती है
जी, मुआशरे में झलकती नहीं है कि उन्होंने पढ़ ली है किताब और उसका कुछ असर हुआ है उन पे।
हाँ, उसका कोई सर्वे होना, अब तो साइंटिफिक सर्वे का जमाना है, हर चीज मालूम की जा सकती है, तो इन मौजूदात पर हम साइंटिफिक सर्वे भी नहीं करते कि हम ये देखें कि माशरे को तख्लीक से और तख्लीकी सरगर्मियों से कितनी दिलचस्पी है। आप देखिए कि इतने चैनल हैं, किसी चैनल पे कोई अदबी प्रोग्राम नहीं आता, ठीक है ना, और शेर व अदब के मसाइल पर, तहजीब व तमद्दुन के मसाइल पर संजीदा गुफ्तगू नहीं होती, बस हालात हाजरा पर उसने ये कहा उसने वो कहा और सतही किस्म के मबाहिस जो हैं वही हमारे
इलाक
से आते रहते हैं और कोई संजीदा और गहरी बात नहीं होती। تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اجتماعی نفسیات کا مطالعہ کرنا اور اس کے پیچھے جو بیماریاں جو امراض چھپے ہوئے ہیں ان کو تلاش کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم تقریب کے دائرے کو مکمل ہونے دیں گے, اور یہ تقریب کا دائرہ جب مکمل ہوگا تو اسی کے وطن سے تعمیر کی کوئی روشنی, امید کی کوئی کرن پھوٹے گی. فی الحال تو اس کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں.
ظفر اللہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں. ظفر صاحب, ایک وجہ آپ سے آج بات کرنے کی یہ کہ ہم, چونکہ مجھے پشتو نہیں آتی بدقسمتی سے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا پشتو کے ادیب یعنی جو خیبر پختونخوا ہے وہاں لوگ بہت متحرک ہیں, آج بھی متحرک ہیں قیام پاکستان سے اب تک کافی, وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور اجمل خٹک کا میں نے نام بھی لیا, تو کیا پشتو کے ادیب شاعر سیاست سے آج بھی متعلق ہیں یا وہ بھی لا تعلق ہو گئے ہیں؟ اور جو سیاستدان ہیں کیا وہ اس طریقے سے پہلے کی طرح پڑھتے ہیں, ان کا ادب سے رشتہ برقرار ہے یا نہیں رہا, ہمیں کچھ یہ بھی بتائیں.
مبشر صاحب, میرا خیال ہے یہ تو آپ کی علم میں بھی ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لیفٹ کی مومنٹ چلی تھی تو اس میں بہت سارے نیشنلسٹ تھے, اور لیفٹ کے مومنٹس میں یہ چیز بہت زیادہ اہم تھی کہ وہ اپنے متعلقین کو اسٹڈی سرکلز میں اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرتے تھے, لٹریچر ٹرانسلیٹ ہو کے آتا تھا, بہت سارا لٹریچر آپ دیکھ لیں, نور محمد ترقی جیسے آدمی کے ناولز پشتو میں بہت پہلے کافی مرتبہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں, اسی طرح روسی لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوتا تھا, پھر ڈزنجو صاحب کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی, تو ایک کلچر ڈیولپ تھا ادھر بھی اور کے پی میں بھی, کہ وہ چونکہ لیفٹ کے ساتھ الائن موومنٹ تھی تو ان میں پڑھنے لکھنے کا ایک رجحان تھا. لیکن میں ابھی بھی کہوں گا کہ تھا, کیونکہ جدید شعرا یا ادیب یا لکھنے والے ابھی شاید اتنے متعلق نہیں رہے ہیں. اب ایک احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو جیسے پی ٹی ایم کا معاملہ چلا یا فاٹا کا معاملہ چلا تو اس میں کچھ نئے لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جو پہلے پس منظر میں نظر آ رہے تھے, اب وہ سامنے نظر آئے ہیں, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں, کچھ لکھنے پڑھنے والے جو ہیں وہ اس طرح سیاست سے متعلق بھی ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں اور وہ ایسی شاعری کرتے بھی ہیں. تو اس کی غالباً وجہ یہ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے.
ٹھیک, اداور قاسمی صاحب سے بات کرتے ہیں. قاسمی صاحب, ایک شعر میں حیدر علی آتش کا سناتا ہوں. لگے منہ بھی چڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب, زباں بگڑی سو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا. تو یہ میں نے اس لیے سنا ہے کہ اب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پہلے جو آپ جناب سے اور شرافت سے بات کرتے تھے, کچھ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور جلسے میں بھی اور میڈیا میں بھی, تو کیا یہ بھی ادب سے دوری کی وجہ ہے یا کیا ایسا کیوں ہوا؟
اس کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں. میں اس سے پہلے میں یہ بتا لوں کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے ہاں اعلی ادب تخلیق نہیں ہوا.
جی,
ایک کرنل عبدال بیلا صاحب ہیں,
جی جی جی,
ان کے 2000 صفحے کا ناول چھپا ہے اور وہ ساری سماجی سیاسی تمام پس منظر اس میں موجود ہے, لیکن کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. ایک فاروق نام کا ایک بندہ آج کل ہالینڈ میں ہے, اس کا ناول چھپا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر اجمل سے لے کے ہمارے لیفٹ کے جو تھے بہت بڑے تھے, وہ اپنا اسلامیہ کالج میں پڑھاتے تھے, نکالے گئے تھے, انہوں نے اس کا فلیپ بھی لکھا سب کچھ, لیکن اس کے بعد کسی نے اس کا نام نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نقاد جو ہے یا رہا نہیں ہے یا وہ اپنے گروپ کے بندے کی بات کرتا ہے.
نقاد تو بہت
آپ کے جی, نقاد جو ہے نا وہ پتہ نہیں نقاد سے مراد ہوتی کہ نقد نقد ہو کوئی چیز, شاید یہ اس کو نقاد کہتے ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن جہاں تک آپ کی بات کا سوال ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا اور اب یہ ہوتا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مصفی, میں سیاستدانوں کی بھی بات کرتا ہوں, مصفی نے جو ہجویات لکھی ہیں یا سودا نے جو کچھ کہا ہے, پہلے وہ اسی طرح چھپا ہوتا تھا, اب کیونکہ ہم زیادہ نیک اور پارزا ہو گئے ہیں اب وہ سودا کے کلیات میں آگے ڈاٹ 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 پڑی ہوتی ہے ان لفظوں کے لیے. تو بات صورتحال یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی اسی زبان کے عادی رہے ہیں, لیکن اب سیاست میں آ کے, اس سے پہلے تو ہم اتنا ہی کہا کرتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا, اس طریقے سے بات کرتے تھے, لیکن اب ہم یہ شعر پڑھنے کے بجائے हम सीधा किसी को उल्लू या उल्लू का पट्टा भी कह देते हैं। ओए ओए तो आम है जी, ये तो बिल्कुल, लेकिन ये फर्क कोई दो तीन सालों में आया है, सॉरी साल नहीं कहना चाहिए मुझे, बरसों में आया है ये, दो तीन बरसों में ये फर्क आया है। उससे पहले बी करेक्टर सैनिटेशन हुई है बहुत ज्यादा, और वो मसलन मुसलमान बेनजीर भुट्टो की बहुत करेक्टर सैनिटेशन हुई थी, लेकिन जिस बंदे ने की थी उसको पीपल्स पार्टी ही ने एक बहुत बड़े अहदे पे लगाया था उस शख्स को। तो मैं अब क्या करूं जी, ये सारे मामले उलझे हुए हैं
जी
मिस्टर भाई, उलझे हुए मामला सारे के सारे।
दुरुस्त कह रहे हैं। मेहताब साहिबा से बात करते हैं और वो सवाल करूंगा जो मैंने जफर साहब से किया था कि सिंधी का अदीब, सिंधी के लोग तो और सिंधी जुबान के लिए भी बहुत हसास हैं, और मुझे मालूम है कि सिंधी में बहुत किताबें भी छपती हैं और अदीब शायर बहुत दिलचस्पी भी लेते हैं सियासत में, और उनका मीडिया भी बहुत ताकतवर है दूसरी कौमी जुबानों के मुकाबले में, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या इस वक्त भी यही सूरत हाल है, क्या सिंधी का अदीब सियासत में दिलचस्पी ले रहा है, और क्या सिंधी का सियासतदान, सिंधी सियासतदान उस तरीके से लिटरेचर पढ़ रहा है या नहीं?
बिल्कुल, इसका मैं जवाब देती हूं, लेकिन एक चीज जो आपने कासमी साहब से सवाल किया कि ये जो गुफ्तगु और अंदाजे गुफ्तगु है, इसको थोड़ा सा एक कॉमेंट करना चाहूंगी कि क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो लोग अदब नहीं पढ़ते वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अदब के पढ़ने के साथ साथ एक चीज होती है तरबियत, एक होती है आपको आपकी तरबियत और आपकी उठान कैसे है। जो अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग हैं वो अपनी अच्छी गुफ्तगू ही करते रहते हैं, लेकिन आपको एक अक्सरियत ऐसी नजर आती है जो गुफ्तगू में बहुत नाशायस्ता अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका ताल्लुक अदब पढ़ने से नहीं है, तरबियत से है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अदब आदाब उन्होंने हमें ऐसे सिखाए कि हम आज भी उससे उधर से उधर नहीं हो सकते, हम उसी तरह ही गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से हमें शायस्तगी से हमारे असातिज़ा ने सिखाया और हमारे वालदैन ने सिखाया। वो चीज अब खत्म हो गई है और लोग इसमें शायद यकीन नहीं करते। दूसरी चीज जो आपको सोचने वाली है वो मैं फिर उस पर जोर दूंगी कि जो टेक्नोलॉजी आ गई है हम उसको भूल रहे हैं कि उसका कितना शदीद असर है। जो आपके टीवी चैनल्स हैं आप वो आप ये देखिए कि उन चीजों को बार बार दिखाएंगे जहां पर एक दूसरे की बेइज्जती की जाती हो, जब नाशायस्ता लफ्ज बोले जाते हों, क्योंकि अब वो रेटिंग पर कौन सी चीज बिकती है तो बिकने वाली चीज में यही नाशायस्तगी बिक रही है, उसकी रेटिंग ज्यादा होती है, चार लोगों को बिठा के मुर्गे लड़ाए जाते हैं गुफ्तगू में और लोग उसको देखते हैं मजा लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे ऐसी की तैसी कर देते हैं उनकी। तो अब आपके जो आपने मुझसे सवाल पूछा है मैं उसकी तरफ आऊंगी। सिंधी जबान में दोनों चीजें चल रही हैं, एक तो बहुत ज्यादा लोग बहुत हसास हैं अपनी जबान के मामले में, दूसरी चीज वो किसी सूरत भी उस पर कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी कोई कमी हो। दूसरी चीज ये है कि जो अदीब है सिंधी का उसमें बहुत ज्यादा सियासत के मामले में वो ज्यादा बाशऊर भी है, हसास भी है, लिख भी बहुत रहा है। हमारे पास कोई रोजाना 30-35 सिंधी की अखबारें जो हैं अखबार छप रहे हैं, लोग पढ़ते हैं उनको, और उसके अलावा चैनल्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि क्या सिंधी सियासतदान भी उतना ही अदब को पढ़ रहा है, तो मैं कहूंगी कि जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि असेंबली में जो लोग जिनको टिकट दिया जाता है वो नहीं देखा जाता कि वो पढ़ा लिखा है। आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में ग्रेजुएशन की एक शर्त बनाई गई थी की गई थी, लेकिन पीपुल्स पार्टी जो हमारी अवामी जमहूरी पार्टी है उसने चूंकि कुछ खास लोगों को लेके आना था जो बेचारे मैट्रिक भी पास नहीं थे, उसके लिए उन्होंने उस कानून को बदल दिया और कहा कि जी जो जो शऊर है लोगों का वो बड़ा और एक्सपीरियंस काम करता है, लिहाजा तालीम की कोई अहमियत नहीं है। तो आपने तालीम का तो बेड़ा यहीं से गर्ज कर दिया। तो जो सियासतदान है उनको चूंकि गर्ज कोई नहीं है तो लिहाजा वो अदब की तरफ कम माइल आपको नजर आते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत ही कम लोग जिनकी वहां पर एक ऐसी शरह होगी असेंबली में जो कि आप کو واقعی پڑھے لکھے اور ادب سے وابستگی رکھنے والے لوگ ملیں گے سندھ اسمبلی کی میں بات کر رہی ہوں, ورنہ میجورٹی آپ کو یہ اکثریت جو ہے وہ اسے بالکل نابلد ہے, وہ اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتی, زیادہ سے زیادہ ایک اخبار پڑھ لیتے ہیں یا اور زیادہ سے زیادہ وہ جو چینلز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں, وہی ان کے لیے معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں, ادب سے ان کا تعلق بالکل نہیں ہے. لیکن ادیب جو ہے وہ آپ کو پولیٹیکلی بہت ہی زیادہ باشعور, حساس اور تیز نظر آتا ہے.
بہت شکریہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ, آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا, بہت اچھی گفتگو کی, میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. عطا اللہ قاسمی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کا بھی, ان تینوں سے گفتگو بہت مفید رہی. لیکن ظفر اللہ خان صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مجھے ابھی گفتگو کرنی ہے. ظفر صاحب, جب کوئی شاعر ادیب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اظہار خیال کرتا ہے, ظاہر آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں, تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے کہ کیا اس کا سیاسی شعور ایسا ہے کہ جس پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں, اسے فالو کر سکتے ہیں؟ جیسے میں جانتا ہوں علی اکبر ناطق کبھی اظہار خیال کرتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کا اس پہ کوئی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اب مجموعی طور پہ آپ کا کیا خیال ہے ادیب و شاعروں کے بارے میں؟
مبشر بھائی, اگر آپ مجھے ایک منٹ کے لیے اجازت دیں تو وہ جو پچھلی بات تھوڑی سی میرا خیال تشنا رہ گئی,
پلیز ہاں وہ بیچ میں
اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. احباب میں میری ہماری جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں سے ایک یہ چیز نکل کے سامنے آ رہی تھی, جیسے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہمارے ہاں ادب تخلیق نہیں ہوتا یا معیاری ادب تخلیق نہیں ہوتا. میرا بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں اچھا ادب تخلیق ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے. میں کچھ ایک اور جانب اشارہ کیا کر رہا تھا, وہ یہ کہ جیسے ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ ادب جو ہے وہ سوشل ریولوشن میں ٹرانسلیٹ ہو کے سماج میں نظر آتا ہے. یہاں یہ بحث ہم نہیں کر رہے تھے کہ کون سا ادیب جو ہے وہ نوبل تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. مثال کے طور پہ اچھا یا برا, درست یا غلط, نہلزم کی ایک تحریک اگر کامو سے یا نشے سے شروع ہوتی ہے اور وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, بیکٹ تک آتی ہے, وٹن پر گوڈو تک آتی ہے, میتھ آف سیسیفس تک آتی ہے, یا وہ کافکا کے میٹامارفسس تک ایک معاملہ آتا ہے, تو وہ سماج میں ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے.
درست,
ہمارے یہاں یہ چیز ٹرانسلیٹ ہو کے نظر نہیں آئی,
اثرات نہیں ہے اس کے. بالکل صحیح بات,
میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب اس پیرائے میں جو ہم دیکھتے ہیں تو خود نظر آتا ہے کہ جہاں سماج ہوگا وہیں پہ آپ کا ادب نظر آئے گا. تو یہ بات تھی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, تو جہاں تک ناطق صاحب کی بات ہے وہ تو میں ویسے ہی اگرہ تفنن ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ,
مجموعی طور پہ ایک ویسی عمومی بات کر رہا ہوں.
اب میرا خیال ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادیب کا پولیٹیکل ویژن, ادیب جس کو ہم ایک اصطلاح میں پولیٹیکل کریکٹنس کہتے ہیں, وہ شاید ابھی اتنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں, پتہ نہیں جائز یا ناجائز, اچھا یا برا, ہمارے ہاں سیاست کو سیاسی بیانات اور پارٹیوں کے منشور اور وہ چیزیں سمجھ لی گئی ہیں کہ سیاسی بیانات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, فلاں نے معاہدہ کیا تھا, پھر وہ فلاں پولیٹیشن کے ساتھ کیوں نظر آ رہا ہے, یہ ایک مجموعی سیاسی بیانیہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. فلاں اینکر نے کیا کہا اور فلاں پولیٹیشن نے کہاں سے خبر لی اور کس کو کہاں سے فائل آتی ہے, بنیادی طور پہ یہ تو سیاست نہیں ہے. لیکن سیاست ایک جاری سماج میں جاری سماجی عمل اور اس کے سماجی ڈسکورس کا نام ہے. یعنی ہمارے سامنے کوئی سیٹ پیٹرنز نہیں ہوتے, ہم ایک زندگی جی رہے ہوتے ہیں جس میں سیاست اس کا حصہ ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی کیسے ترتیب دیں. تو اس میں ایک ادیب کا پولیٹیکل کریکٹ ہونا بہت اہم ہوتا ہے. جب تک ادیب پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوگا سماج کے لیے رائے, تو ادیب ہی متعین کرتا ہے. یعنی حقوق کی بیداری کی تحریک اگر سماج میں آتی ہے تو وہ تو ادیب ہی سے آئے گی.
بالکل, لیکن اگر ادیب کو اگر سیاسی شعور نہیں ہے, درست سیاسی شعور نہیں ہے, سماج کا شعور نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر دوسروں کی بھی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہوگا.
ظاہر ہے پھر یہ معاملہ تو اس طرف چلا جائے گا.
ظفر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ سے گفتگو بہت اچھی رہی اور ہمارے سامعین کو بھی اس سے بہت انہوں نے انجوائے کیا ہوگا, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل. ہم مبشر زیدی کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.